हरे राम 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 हरे हरे। तो संक्षेप में मुझे इस साल सभी जितने समूह हैं हमारे तो सबको मिलने की इच्छा थी मेरी। तो मुंबई में सब लोगों का मीटिंग हुई, यहाँ पर आके कीर्तन टीम की मीटिंग हुई और एक महत्वपूर्ण ग्रुप जो है समूह वो है किचन का ग्रुप। परम पूज्य राधानाथ महाराज नवंबर एंड और दिसंबर के शुरुआत में वृंदावन धाम में थे, कुछ दिन वृंदावन में थे, कुछ दिन बरसाने में थे, कुछ दिन गोवर्धन में थे। तो उस समय उन्होंने वृंदावन के हमारा जो हॉस्पिटल है, कितने लोग जानते हैं, जानते हैं वृंदावन में हमारा हॉस्पिटल परिक्रमा मार्ग पर है, वहाँ पर उन्होंने 5 घंटे बिताए बिना प्लान के, बोले मुझे मिलना है सब लोग आ जाओ। उसके बाद में अस्पताल का जो भूमि हमारी है, कितने लोग गए उधर, अभी लेके जाएंगे आपको, डोंट वरी। तो हमारा यहाँ पर 5 एकड़ जगह है जहाँ पर नया अस्पताल बन रहा है, जहाँ पर कल हमने यज्ञ किया था। सबने हाथ ऊपर नहीं किया, यज्ञ में नहीं आए थे आप लोग, फिर आए ना आप लोग, नहीं आए, नहीं आए, अच्छा कोई बात नहीं। 6 तारीख को फरवरी को षट तिला एकादशी है, उस दिन प्रवचन उधर होने वाला है, तो आप आ जाइए। तो उधर भी महाराज ने 5 घंटे बिताए और उस समय उन्होंने बताया कि जो भी हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं वृंदावन के बरसाना की जो सेवा है उसके विषय में पुनर्जागृति होनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं और किस लिए हैं, जो हम भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये बताओ ना, जरूरी ना। जैसे हम विवाह करते हैं तो कुछ मन में होता है ना उद्देश्य, विवाह क्यों कर रहे हैं, दुनिया कर रहे हैं इसलिए हम लोग नहीं करते, हमारा भी कुछ विचार होता है। पढ़ रहे हैं आप लोग तो पढ़ने का भी कुछ होता है ना हेतु, कि मुझे क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ रहा हूँ मैं ये। तो उन्होंने कहा कि अभी 30 साल के प्रयास के बाद यहाँ पर अस्पताल बनने जा रहा है। 30 साल तक तो हम लोग ऐसे ही सब जगह पर किराए की जगह पर अपने काम करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। अगले साल से राधा रानी की इच्छा होगी तो हम लोग नए बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे। तो उनकी ये इच्छा है कि नए बिल्डिंग में जाने के पहले सारी बातें पुनः एक बार चर्चा की जाए और नए उत्साह के साथ, नई प्रेरणा के साथ और नए उद्देश्य के अनुभूति के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग वहाँ प्रवेश करें। तो कहते हैं उजड़नी, मराठी में कहते हैं उजड़नी मतलब रिवीजन। ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है। विवाह के 35 साल के बाद में विचार करते हैं मैंने क्यों विवाह किया, क्या जरूरत थी विवाह करने की, ऐसे कुछ भन्नाट प्रश्न जो मन में आते हैं। कोई भी कार्य करने के पहले शुरुआत में ही उसका उद्देश्य जो है वो क्लियर होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी कार्य में कार्य नहीं होती है, जो काम हम करने जा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता है, उस काम जो करने वाले उसके पीछे की भावना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अस्पताल तो बहुत लोग खोलते हैं लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है, अधिकतर धन कमाने का, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक लोग बीमार पड़ते ही रहेंगे और ये बिजनेस चलते ही रहेगा। तो अस्पताल खोलेंगे तो हर प्रकार की बीमारियां होती रहेगी, तो लोग धन कमाने के उद्देश्य से खोलते हैं। एक बार अच्छा खासा धन कमा लिया तो कीर्ति के लिए काम करते रहते हैं, हमारा नाम हो जाए, ब्रांड हो जाए, भारत भर में प्रसिद्ध हो जाए, ऐसे हर प्रकार के मूड होते हैं, सामने काम वही चलते रहते हैं, मरीजों का इलाज करना, लेकिन उसके पीछे अलग अलग भावनाएं होती है। पर भक्ति वेदांत अस्पताल में ये जो कार्य अस्पताल का है ये भगवान की संतुष्टि के लिए होता है, ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जिसमें भगवान के लिए सेवा की जा रही है, ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जिसमें आध्यात्मिक विभाग है जो 1 रुपया भी कमाता नहीं है, उस पर खर्च करने पड़ते हैं, और जो स्पिरिचुअल केयर है, आध्यात्मिक देखभाल जो है, हम लोगों को फ्री में देते हैं, हमारे स्टाफ को हम पगार देते हैं, लेकिन लोगों को, पेशेंट लोगों को आध्यात्मिक देखभाल, स्पिरिचुअल केयर जो है वो फ्री में देते हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेरणा जो भी, और भक्त बनते हैं वहाँ पर मरीज हमारे, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है वो भगवान की सेवा है। केवल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बहुत हॉस्पिटल में मंदिर होता है, हमारे भी है, ऐसा नहीं है। वो जो आध्यात्मिक वातावरण है वो अस्पताल के कोने कोने में फैला हुआ है। कहीं भी जाएंगे आपको भगवान नाम सुनाई पड़ेगा। तो ये सब समझना जरूरी क्यों है? सामने से वही कार्य चल रहा है मरीज को इलाज करने का, लेकिन पीछे उसका उद्देश्य जो है वो बहुत महान है। उसके प्रेरणा स्रोत कोई धनी, केवल धनी व्यक्ति नहीं है, उसके प्रेरणा स्रोत परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है। उन्होंने उसकी दूरदृष्टि हमको दी थी। उनकी आज्ञा का पालन करने वाले, प्रेरणा को ग्रहण करने वाले जो जितने भी ट्रस्टी हैं, विश्वस्त हैं, वो सब ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं। उनके आदेशों का पालन करने वाले जितने भी डायरेक्टर हैं, संचालक मंडल, वो सब ब्राह्मण दीक्षित गौड़ीय संप्रदाय के भक्त हैं, दीक्षित। और पूरे अस्पताल में 1200 से 1300 लोग काम करते हैं, अभी सब मिलके 1800 काम कर रहे हैं सारे अस्पताल मिलके। उसमें 300 लोग हरे कृष्ण आंदोलन में भक्त हैं, तिलक धारण करके हॉस्पिटल में आते हैं, हरे कृष्णा सबको बोलते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करके विश नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत दुर्लभ प्रार्थना जो है, जो आम जनता को पता नहीं है, चैतन्य शिक्षाष्टकम 4 गुना हो गाते हैं। अस्पताल के चपरासी, वॉचमैन, सिक्योरिटी, लिफ्टमैन सबको शिक्षाष्टक बाय हार्ट है। इसलिए आप लोगों को प्रण लेना चाहिए कि यहाँ से वापस लौटने के पहले बाय हार्ट होना चाहिए चैतन्य शिक्षाष्टकम, क्योंकि आपके सामने हमारे अस्पताल के जो कर्मचारी है वो सब लोग बाय हार्ट गाते हैं उसको। सो ये मैंने बैकग्राउंड इसलिए बताया कि आप लोग सब किचन में काम कर रहे हो, किचन में तो होटल में भी काम करते लोग, वही रोटी बनाना है, वही चावल बनाना है, वही सब्जी काटना है, वही रोटी बेलना है, वही गैस है, वही सिलेंडर है, वही सब मेन्यू बनाना है, उसको बनाना है, नमक डालना है, स्पाइस डालना है। लेकिन जब हम उसको भगवान के लिए बनाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं, उसमें दिव्य चेतना, दिव्य शक्ति, आध्यात्मिक पुष्टि निर्माण होती है, भगवान की कृपा उसमें आ जाती है। इसलिए जैसे वो कहते हैं ना कि ऐसे मराठी में कहावत है, सैन्य पोटावर चालतो, अर्थात जो सैन्य होता है ना, सेना, देश की सेना जो होती है, वो कहते हैं पेट पे चलती है, जब तक पेट में अन्न मिलता है बराबर से उनको लड़ते रहते हैं। एक बार उनके बास्केट में जो भी बैग में जो खाना है वो खराब हो गया तो फिर मृत्यु कभी भी आ सकती है, सैन्य लड़ नहीं सकता है। वैसे भक्ति का आंदोलन भी प्रसाद पे चलता है, भोजन पे नहीं, प्रसाद, क्योंकि तो प्रसाद और भोजन में अंतर क्या है? भोजन जो होता है वो केवल शरीर को पुष्टि देता है, और वही भोजन जब प्रसाद बन के आता है तो मन बुद्धि आत्मा को भी पोषण देता है। इसलिए हम लोग प्रसाद देते हैं, प्रसाद लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको खाकर। इसलिए बार बार कहते हैं कि प्रसाद को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, प्रसाद स्वयं कृष्ण है। प्रसाद खाने से आपको स्नायु में शक्ति आएगी पेट के द्वारा, लेकिन आत्मा को और मन को, बुद्धि को दिव्य शक्ति प्राप्त होगी, जो शक्ति के माध्यम से हम भगवान को पहचान सकते हैं कि भगवान कौन है। वो पहचानने की शक्ति जो है वो मन में, बुद्धि में, आत्मा में प्रसाद खाने से आती है। अभी भोजन जो होता है ना, कोई भी अन्न, आप समझो आप चावल दाल बना रहे हो, खा रहे हो, रोटी सब्जी खा रहे हो, या तो श्रीखंड खा रहे हो, हलवा खा रहे हो, हर एक भोजन के पदार्थ के दो अंग होते हैं। एक होता है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, आप देख रहे हैं अरे आज क्या है, अरे हलवा है, आज क्या है, सुबह सेवई का उपमा है, ये आपको दिख रहा है, उसका स्वरूप दिख रहा है। जो हम देख के पसंद नापसंद कर सकते, अरे सही समय का उपयोग क्यों बनाया, इडली बनाना चाहिए था, अरे डोसा बनाना चाहिए था। तो वो शरीर के स्तर पर, उसका इंद्रियों के स्तर पर आदान प्रदान होता है। लेकिन उसी पदार्थ का एक दूसरा अंग होता है, बाहर भी होता है, दुनिया में भी होता है, इधर भी होता है, वो होता है सूक्ष्म अंग। वो क्या होता है, वो उसके पीछे क्या भावनाएं हैं। जैसे माँ ने वो रोटी बनाई है और आपको खिला रही है, तो आप उसको अलग अनुभव करते कि नहीं। माँ ने अपने प्रेम से बेटे के लिए बनाया, अरे बेटा हॉस्टल से रविवार को घर पे आएगा तो मैं भी उसके लिए उसके पसंद का आलू पराठा बनाऊंगी। वो प्रेम से उसका याद करते करते प्रेम से बना रही है वो, तो वो प्रेम भी मन को छूता है, वो उसका सूक्ष्म अंग है। आपको समझ में आया ना। और होटल में जब खाते हो ना, फाइव स्टार में भी खाओगे, तो पीछे का जो रसोइया है, आचारी जो बनाने वाला है, वो आपका कोई लगता नहीं है, ना चाचा है, ना मामा है, ना प्रेमी है, कोई नहीं है। वो तो नौकरी कर रहा है, उसको बताया गया है, उसको वैसा बना रहा है वो। आपको किसको खिलाएगा उसको पता नहीं है। वेटर भी आपको कोई लगता नहीं है, वो भी आपको देगा आके, कोई प्रेम नहीं उसके अंदर। तो वो जो भावना है, फाइव स्टार होटल में खाने पर भी आपको घर की रोटी का आनंद नहीं आता है, समाधान संतुष्टि नहीं होती है। तो वो हो गया हर एक अन्न का सूक्ष्म भाव। और वो सूक्ष्म भाव जो है वो हर व्यक्ति को छूता है। और वो कैसे उत्पन्न होता है, बनाने वालों की भावना से उत्पन्न होता है। अगर आप दुखी हो और दुखी से बना रहे हो तो वो दुख भी उसके अंदर आएगा। अगर आप किसी से द्वेष करते हुए कुछ गुस्से में या कुछ ऐसा किसी के बारे में कुछ क्रोध करके बना रहे हो तो भाव भी उसके अंदर आएगा। आप जो भी बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, रोटी का आटा बना रहे हो, सब में आएगा वो। जो जो गतिविधि भोजन को बनाने में होती है, आटा को गुथो, गुथों को गोली बनाओ, गोली को बेलो, फिर सेको, घी लगाओ, जितनी भी प्रक्रिया है, ये सब प्रक्रिया में आपकी भावना उसमें प्रवेश करती है। और प्रेम की भावना होगी तो प्रेम की भावना प्रवेश करेगी, क्रोध की होगी, द्वेष की होगी, हिंसा की होगी, जलन की होगी, और कोई नेगेटिव भावना होगी वो प्रवेश करेगा उसके अंदर। या धन की लालसा से लोभी होकर बना रहे हैं तो लोभ भी आएगा उसके अंदर। गुरुदेव बताते हैं कि यही समाप्त नहीं होता है, किस भावना से दे रहे हो। इसमें यहाँ पर बांटने वाले भी है क्या, प्रसाद यहाँ पर बांटने वाले भी हैं, रवि शिंदे? ध्यान से सुनो, परम पूज्य राधानाथ महाराज जी का वाक्य है, अगर देने वाला भी कंजूसी से दे रहा है तो कंजूसी का स्वभाव भी उसके साथ ही उसको परोस रहा है वो। अरे इतना क्यों लेते हो, थोड़ा सा देखो, थोड़ा और दो ना, अरे नहीं 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 इतना ही बोला है। या देने वाले को मन में चिंता है कि ये समाप्त होगा तो मुझे क्या मिलेगा। ये सारी भावनाएं आप परोसते समय उसमें प्रवेश करती है। एक बार राधानाथ महाराज जी, श्रीधर महाराज जी और वो राधाकुंड में रहते, उनका एक महाराज जी का नाम याद नहीं आ रहा है, वो महाराज जी और नर्तकी माता जी, ये सब लोग मसूरी गए थे हिंदी पढ़ने के लिए, याद है ना आपको? हाँ, उस समय गोविंद प्रभु जी उसको कुकिंग कर रहे थे, तो उस समय महाराज जी ने ये अमूल्य वाक्य बताए थे कि जो भावना से आप बना रहे हो, जो भावना से परोस रहे हो, वो सारी भावनाएं उनको दे रहे हो, और कंजूसी से दे रहे हो तो कंजूसी भी साथ में उनको दे रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आप लोगों को बता रहे, आप लोग हिंदी पढ़ रहे थे, पीछे क्लास चल रही थी। महानिधि महाराज तो ये सब बताने का प्रयोजन यहाँ पर ये है, किचन में जो सामूहिक चेतना होती है सबकी मिलकर, वो सारी उधर के भोजन में प्रवेश करती है। एक प्रवृत्ति ऐसे है जो द्वेष भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, और बहुत भक्तिपूर्ण भी नहीं है, वो एक बीच में एक स्थिति होती है, वो क्या होती है बताओ। आम तौर पे किचन में जनरली अगर बताया नहीं गया तो क्या होते रहता है, बोलो बता दो, बड़बड़ है ना, हिंदी में प्रगल्भ संस्कृत शब्द यूज किया, यानी जो हम लोग मुंह बंद नहीं रख सकते हैं, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ यहाँ की वहाँ की इधर की उधर की सबकी बातें करते रहते हैं, और वो भी चेतना जो है वो अन्न में प्रवेश करती रहती है। इसलिए आप लोगों को बहुत सावधान रहना है, कितनी भी बातें करने का वेग आया ना तो आपको भगवान नाम का ही उच्चारण करना है। आप में से कितने लोग यात्रा में रोटी बेलने आते हैं, इसमें कोई है? देखो दो चार लोग है, हाँ, लेकिन आपको पता नहीं है 80 से 100 माताजी परभणी पुणे कहाँ कहाँ से ट्रैवलिंग करके यात्रा में आते हैं, और 25,000 से 30,000 रोटी बनाते रोज, लेकिन 16 घंटे रोटी बनाते रहते हैं क्योंकि एक भोजन हो गया दूसरे भोजन की तैयारी होती है, चलते रहते हैं उनका काम कंटिन्यूस, ऐसे लाइन से तवे लगा के रहते हैं, चूल्हा बना के रहते हैं और लाइन से वो, लेकिन अखंड हरिनाम जप करते हैं, अखंड गाते रहते हैं कॉन्स्टेंट, स्त्री हो या पुरुष हो, ज़्यादा करके स्त्रियाँ होती हैं और स्त्रियों को ज़्यादा बोलने की इच्छा होती है, बुरा मत मानना, लेकिन एक भी स्त्री उसमें कोई भी बात नहीं करती। फिर तू कधी आली, जो ट्रेन उशीर झाली का लवकर आली का, अरे मैं जो उशीर झाले, पाऊस पडत होता, माझी दिशा चुकली, कुछ बुरी बातें नहीं है लेकिन ये बेफजूल की बात है। अरे तू ते आणलं कभी ते विसरली तू, अरे मी घड्याळच आणलं विसरली, काय करू आता, ब्रशच नाही आणला, टूथपेस्टच नाही आणली, ये सब क्या है, रोटी बेलते हुए चल रहे हैं। ये सबको अवॉइड करने के लिए, मना करने के लिए वो माताएं कॉन्स्टेंट हरे कृष्ण महामंत्र गाती रहती है मुंह से, कुछ चाहिए तो ऐसे इशारे से बताते हैं और एकदम जरूरी है तो कुछ बता देते हैं, लेकिन उसके अलावा सेवा के संबंधित बातों के अलावा कुछ भी बातें नहीं करते हैं। इसलिए उन रोटियों को खाते समय इतना लोगों को आनंद आता है, क्या कहूँ आपको, मैंने खुद अनुभव किया है। कभी कभी रोटी नहीं खाता मैं, लेकिन मैं वो उनको देखकर मुझे लगता है कि आप एक दो दिन रोटी भेज दो, मैं खाना चाहता हूँ। जय हो, जय हो, हरि बोल। सो अपने लक्ष्य को विचलित मत होने देना, आंधी हो या तूफान हो या हाँ बात बरेशना, हे दिन जामिनी या नहीं रे। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि 350 लोग यहाँ पर है इस समय, थोड़ा नंबर आगे पे हो सकता है कि 300 से ऊपर लोग यहाँ पर अभी है, बरसात में आंधी में तूफान में धूप में सब में सेवा कर रहे हैं, और वो सब मिलके आप लोगों के हाथ का भोजन खाने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पर किस लिए हैं, हम लोग यहाँ पर ब्रजवासियों की सेवा करने के लिए हैं, और ब्रजवासियों की सेवा करने की जो चेतना है वो सबसे अधिक जो है वातावरण के साथ में भोजन से आती है। 3 बार भोजन करना है, नाश्ता लंच और डिनर, तीनों बार जिस भावना से बनाया जाएगा वो भावना आप उनको दे रहे हैं। मैं आपको भी एक बहुत सुंदर कहानी बताता हूं, मेरे विचार से वो कहानी पर्याप्त है। वर्षा हो रही है लेकिन आप सुनना जरूर। एक प्रोग्राम में एक प्रभु जी गए थे लेक्चर देने के लिए, लेक्चर दिया, सबको सुनाई पड़ रहा है, एवरीबॉडी ध्यान से सुनना, इससे डिस्ट्रैक्ट मत होना। तो एक प्रभु जी, एक वरिष्ठ वैष्णव एक जगह पर भोजन करने गए थे, भोजन नहीं लेक्चर देने गए थे, लेक्चर, तो उन्होंने लेक्चर दिया वहां पर और प्रसाद पाया, फिर हरे कृष्णा हो गए, सब घर चले गए। रात में वो प्रवचन करने वाले प्रभु जी को ऐसा सपना आया कि वे अपनी माता का गला घोटकर खून कर रहे हैं। अभी ब्राह्मण दीक्षित भक्त जो है वो सपने में भी सोच नहीं सकता है कि मैं मेरी माँ का गला घोट के खून करूँ, वध करूँ, और नींद से उठे डर के ऐसे, क्या रे क्या सपना आ रहा है। थोड़ा गए वॉशरूम, गए पानी पिया, फिर मन को थोड़ा शांत करके सो गए, फिर सो गए तो फिर चालू वही सपना, बार बार वही, अपनी माँ का गला घोट रहे हैं। वो तो भक्त थे, उनको पता था। तो उन्होंने विचार किया कि कहाँ खाया मैंने कल, तो पता चला कि अरे हाँ मैंने कल प्रोग्राम में खाना खाया, दोपहर में घर का ही खाना खाया था, रात को प्रसाद प्रोग्राम में खाया था। तो वो ना वो प्रोग्राम के घर पे गए वापस और यजमान को पूछा उन्होंने कि प्रसाद किसने बनाया था। तो प्रसाद किसने बनाया था तो उन्होंने बोला हमारे घर में कुक है, कुक, वो कुक ने प्रसाद बनाया था। तो वो कुक से मिलने गए और थोड़ा सा इधर उधर की बातें की, फिर उनको पूछा कि आपने प्रसाद बनाया। हाँ आपने प्रसाद बनाया। बोले आप प्रसाद बनाते समय क्या सोच रहे थे। देखो ध्यान से सुनो, प्रसाद बनाते समय आप क्या सोच रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपकी कथा मुझे इतनी अच्छी लगी, उधर करो उसको, हेलो उधर मुंह करो, आवाज़ कम करो, सब लोग स्पीकर की ओर मत देखो, ये स्पीकर की ओर देखो। फिर बातें करते करते वो आचार्य जो कुक था ना रसोईया, उसने बताया कि आपकी कथा मुझे इतनी अच्छी लगी तो मुझे ना बड़ा पश्चाताप होने लगा। किसका? क्योंकि मैं मेरे गांव में मेरी माता का गला घोटकर खून करके भाग के यहाँ पर आया हूँ और कल मुझे रोटी का आटा गूंथते समय वो सारी दुर्घटना याद आ रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया, इतना जघन्य पाप मैंने क्यों किया। ये सारी बातें इतिहास मेरे मन में चल रहा था स्मरण के माध्यम से, तब उनको समझ में आया कि मेरे को सपना ऐसा क्यों आया। तो समझे आप, अभी उसने माँ का खून नहीं किया है, वो विचार से वो रोट रोटी बना रहा था उसका। एक और बरसाने की कहानी सुन लो जो मुझे यहाँ के ब्रजवासियों ने बताई है, हमारे ब्रजवासियों ने, ध्यान से सुनना। एक साधु था, वो एक दिन वो उनको ना वो साधु को बड़ा सिद्ध साधु था, उसको अपने जप में ध्यान में रोज राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन होता था। ये भी होता है जब हमारा भजन और हमारा जप ध्यान परिपूर्ण होगा तो हमें भी नाम उच्चारण करते ही लीलाओं का दर्शन होने लगेगा। तो वैसे उनको ऑलरेडी हो रहा था, रोज सिद्ध महात्मा थे वो। और एक दिन वो बरसाने में या शहर में कहीं भंडारे में गए। भंडारा क्या मतलब क्या होता है, लोग अरेंज करते हैं आ जाओ हमारी तरफ से भोजन है, कार्ड बांटते हैं लोगों को, चिट्ठी देते हैं साधुओं को, साधु चिट्ठी दिखा के भोजन प्राप्त करते हैं। तो बरसाने में वो साधु आए और उन्हें भंडारे में भोजन किया। मेरी आपको विनती है कि एक एक वाक्य इस कहानी का ध्यान से सुनना है। तो भयंकर नहीं कह सकते लेकिन ये वैसे भयंकर ही कहानी है, लेकिन आप सुनो जरूर, ऐसे सुनो कि आपको जीवन भर याद रहेगा जो मैं क्या कहानी बता रहा हूँ। तो आए भोजन किया चले गए, अगले दिन जब उठे और जप में बैठे सुबह भोर में ब्रह्मा मुहूर्त में, तो भगवान का लीला का दर्शन हुआ ही नहीं उनको, जो अपेक्षित था कि जब करते ही शुरू हो जाएगा वो हुआ ही नहीं, नंबर वन। और नंबर टू, उनको केवल खून मांस पेशी चीख यही सुनाई पड़ रहा था दर्शन में। तो उनको बहुत दुख हुआ। अभी देखो संत को भगवान के दर्शन होते हैं, उनको खून और चीख और मांस की पेशियां टुकड़े टुकड़े दिखाई पड़ रहे हैं तो भयंकर बीभत्स भावना आएगी ना, घृणा से ऐसे भावना होगी ना, तो बड़े परेशान हो गए ना। बहुत देर कोशिश की लेकिन वो जो चिंतन था ना उनका वो समाप्त नहीं हुआ। फिर वो भाग के अपने गुरु के पास गए, महाराज महाराज पता नहीं क्या मैंने अपराध किया, आज मेरे को दर्शन के बजाय ये कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो महाराज ने बोला क्या खाया कल तुमने, तो उसको भी याद आया कि मैंने बरसाने का भंडारा खाया था। बोले जाओ पूछो किसने भंडारा किया था, तो वो आया उस आश्रम में भाग भाग के पूछने के लिए किसने भंडारा किया था। बोले वो तो चले गए, कल भंडारा करके चले गए। थोड़ा नहीं, मैं मुझे उनका पता बताओ, गुरुजी की आज्ञा है पता करना है कौन है वो। तो पता करके वो राजस्थान में गए साधु ढूंढते ढूंढते, उनका पता ढूंढा, उनको मिले जाके और उनको पूछा, महाराज जी मतलब जो भी है आपने भंडारा क्यों किया था, किस कारण से किया था। तो उन्होंने ना ये प्रश्न पूछते उनको फूट फूट कर रोने लगे। वो बोला क्यों रो रहे आप, बहुत देर रोए और फिर सबने आपको संभाला उन्होंने और कहा कि मैं राजा के यहाँ राज वैद्य हूँ। उस समय वो संस्थानिक हुआ करते थे, पता है आपको, भरतपुर के राजा, इसके राजा, माधोपुर के राजा, फतेहपुर के राजा, ऐसे बहुत राजा हुआ करते, अपने अपने छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, उनके बकायदा सब मंत्री मंत्र सब हुआ करते थे, लेकिन संस्थानिक, भारत पूरा देश नहीं। तो राजा का मैं राज वैद्य हूँ। तो कहानी बताना शुरू किया कि हमारे राजा को एक कन्या हुई, जवान हो गई, और राजा की जो राजपुत्री है वो बिना विवाह के कोमल अवस्था में गर्भवती हो गई। कैसे बताने की जरूरत नहीं है। तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ, अरे मेरी ख्याति का क्या होगा, मेरी पुत्री बिना शादी के। राज वैद्य को बुलाया, इसका गर्भ को गिरा दो, ये मैं सहन नहीं कर सकता, मेरी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है, मैं राजा हूँ। तो राज वैद्य तो भक्त था भगवान का, आज जैसे डॉक्टर नहीं थे, वो पूरे वेद पढ़ने वाले आयुर्वेदिक वैसे भक्त थे। उन्होंने कहा हमारे धर्म में, हमारे आयुर्वेद में, हमारे वेदों में आदेश नहीं है कि किसी के गर्भ को नष्ट करना, गर्भ को जितना हो सके उतना बचाना हमारा काम है, ये हमारे लिए आदेश है वैद्य लोगों को। तो राजा ने खूब समझाया, देखो मैं राजा हूँ, मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है, मेरी जनता मेरा विश्वास को बैठेगी वगैरह वगैरह, बहुत बातें की वो वैद्य टिके रहे, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। फिर उसने बोला कि आपको मैं मेरा आधा संस्थान दे दूंगा, आधा संस्थान के राजा आप बनोगे और आधा मैं रहूंगा। फिर भी वो नहीं, देखो कितना बड़ा प्रलोभन दिया, आगे वैद्य की वैसा करने की जरूरत भी नहीं है, पूरा प्रॉपर्टी पूरा हो जाएगा उनका, फिर भी तैयार नहीं हुए, बहुत सिंसियर थे वो। फिर राजा ने तीसरा उपाय निकाला, उन्होंने कहा अगर मेरे कन्या का गर्भपात नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारा वध कर दूंगा। वध कर दूंगा बोला तो डर गए वो, राजा बहुत गंभीर और ऐसे सीरियस थे उस मामले में। तो फिर उन्होंने वो दवाई बनाई और वो कन्या को खिलाई और कन्या का गर्भपात हो गया। गर्भपात में क्या होता है, वो जो गर्भ अंदर है ना, वो जो शरीर फॉर्म हो चुका है, जो भी है छोटा मोटा इतना सा होता है, उसके टुकड़े टुकड़े होकर वो बाहर निकलता है, मांस खून और सब कुछ। तो राजा ने उसको बहुत धन दिया, प्रचंड धन दिया। तो राज वैद्य अपने गुरु के पास गया, बोला महाराज जी मुझे मेरे राजा ने बहुत ज़बरदस्ती ये गलत काम करवाया है, अभी मैं क्या करूँ आप बताइए। उन्होंने कहा जाओ ये सब पैसा जो है उसका एक रुपया भी उपयोग मत करो, सारा पैसा जाके बरसाने में साधुओं को भोजन कराओ। तो मैं बरसाने आया था और मैंने वो भोजन किया था सबके लिए। धन कहाँ से आया था, गर्भपात करने से जो दक्षिणा बख्शीस जो भी मिला, पारितोषिक मिला, वो धन से यहाँ पर भोजन बनाया गया। हो सकता है प्रेम से बनाया होगा, लेकिन जिस धन से बनाया वो धन की भावना भी अन्न में आती है, प्लीज अंडरस्टैंड। इसलिए कभी भी भले मांसाहारी व्यक्ति ना हो, भले शराबी ना हो, लेकिन गलत काम करके पैसे कमाता है तो उसके घर में भी खाना नहीं चाहिए। क्या चीटिंग करता है समझो, क्या और कोई अपराध अपर करता है बिजनेस में, लोगों को चीट करके बहुत पैसा कमाता है, खुद बहुत ऐसा शाकाहारी है और सब कुछ है, लेकिन धन कमाने का रास्ता जो है वो गलत है। वो भी गलत रास्ता जो है वो आपके अन्न को प्रभावित करेगा। आप जो भी रोटी खाएंगे वो रोटी किस पैसे से आ रही है, प्रामाणिकता से, ईमानदारी के धन से आ रही है कि लुटारू लोगों की धन से आ रही है, उसका भी परिणाम भोजन में होता है। तो मेरे विचार से दो कथाएं आपके लिए पर्याप्त हैं और दोनों कथा सत्य है। इसलिए किचन में सदैव प्रवेश करने से बाहर निकलने तक भगवान नाम का कीर्तन ही होना चाहिए, या तो भगवान की कथा सुननी चाहिए, केवल जरूरत होने पर ही बात करनी चाहिए। बोले चाकू दे दो या आलू लेके जाओ, कॉलीफ्लावर लेके आओ बस, या बेलने गोली लेके जाओ, दूसरा आटा लेके आओ, गोली बनाऊंगा। केवल कम से कम शब्दों का ही आपको उपयोग करना है। भगवान नाम का कीर्तन कथा श्रवण एवं कीर्तन करते रहना चाहिए, तब जाकर आपका हाथ से बना हुआ, आपके सहयोग से बना हुआ जो भोजन है वो लोगों को, शरीर को पुष्टि देगा ही, आत्मा को भी पुष्टि देगा, और उनका यहाँ आने का जो प्रयोजन है वो सफल हो जाएगा। यहाँ पर वो आ रहे हैं तो मैं भी आया हूँ, मेरा घर तो लेके नहीं आया ना, मेरा किचन में बहुत सुंदर व्यवस्था है उधर, एकदम परफेक्ट डाइट वाला ऑर्गेनिक सब मैं भोजन करता हूँ, वो तो यहाँ उस व्यवस्था लेके नहीं आया हूँ, तो क्या खाता हूँ, जो किचन में बनता है वही खाता हूँ, है ना। मेरे घर पे मुझे पता है कि मेरी पत्नी की चेतना क्या है, किसके साथ मैं डील कर रहा हूँ, कौन सा प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे पूरा पता है, यहाँ पर मुझे पता नहीं है। और श्रद्धा ये है मेरी कि आप सब लोग भक्त मिलकर बिना कोई बड़बड़ किए शांति से भगवान नाम लिए आप भक्त लोगों के हाथ से रोटी प्रसाद बन रहा है वो मैं ग्रहण कर रहा हूँ, ऐसी मेरी श्रद्धा है। कई बार जो भक्त होते हैं बहुत साल भक्ति में होते हैं और केवल प्रसाद ही पाते हैं, उन लोगों को अनजान लोगों के हाथों से खाने से बुरे बुरे सपने आते हैं। इसलिए अधिकतर जो भक्त होते हैं वो अनजान लोगों से खाना नहीं खाते हैं, इसीलिए रेस्टोरेंट में नहीं खाते क्योंकि वहाँ पर अनजान लोग बनाते हैं। और सत्संग में भी जब केटरर का आना खाना आता है तो वहाँ पर हम नहीं खाते हैं क्योंकि केटरर भक्त होगा लेकिन केटरर के बनाने वाले भक्त नहीं होते हैं, बिना स्नान किए आते हैं बनाने के लिए। इस तरह से किचन का जो वातावरण है वो उसके अनुसार वो भोजन वहाँ निकलता है। दिखने में बहुत सुंदर आकर्षक स्वादिष्ट अच्छे सुगंध वाला हो सकता है, मन को ललचाने वाला हो सकता है, लेकिन आत्मा के लिए विपरीत हो सकता है अगर उसकी चेतना ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपको सबको निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग किचन में काम करने वाले और परोसने वाले अपनी चेतना को शुद्ध रखो, शांत रखो, भगवान नाम में बनाए रखो, क्योंकि तो आपके हाथों से बना हुआ खाना कई लोगों को असर करने वाला है, प्रभावित करने वाला है, उनकी चेतना को या तो नुकसान करेगा या चेतना की वृद्धि करेगा। जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं वो वृद्धि होगी उसकी। और हम लोग प्रवचनों में क्या बताते हैं कि यहाँ का जल जो है वो रस है, स्वयं रस है, यहाँ का भोजन जो है वो रस का तत्व है, यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का निवास, सब कुछ रसमय तत्व है। और रसमय तत्व का मतलब क्या है, जब हम भक्ति के चरम सीमा पर पहुँचते हैं तो रस का आस्वादन करते हैं, प्रेममय रस का आस्वादन करते हैं, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुरी रस, दास्य रस, शांत रस, ये जो शुद्ध रस हैं उनका अनुभव करते हैं हम। ऐसे हम प्रवचन में कहते हैं कि ये बरसाना धाम है, तो उसमें रस तत्व से संपृक्त प्रसाद लोगों को देना आपका काम है। भले हम रसिक भक्त नहीं हैं लेकिन मुख से भगवान नाम तो ले सकते हैं, बड़बड़ करना बंद कर सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं। कोई दावा नहीं कर रहा है कि मैं रसिक भक्त हूँ, मैं सभी अनर्थों से मुक्त होकर निष्ठा की स्थिति में अभी भाव और रुचि का अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। लेकिन मैं अभी कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, मैं केवल भगवान नाम का श्रवण और कीर्तन करने वाला हूँ, ये रसिक ना होते भी आप कर सकते हो, है ना। जैसे आप कीर्तन कर रहे हो, कोई नहीं कह रहा है कि हम रसिक हैं, हम रसिक कीर्तन कर रहे हैं, तो प्रामाणिक कीर्तन कर रहे हैं। प्रामाणिक कीर्तन हम कभी भी कर सकते हैं, रसिक जब होंगे तब देखा जाएगा, लेकिन प्रामाणिकता के भाव से हम कीर्तन कर सकते हैं, भोजन बना सकते हैं। मेरा तो ऐसा आपको कहना है कि आप लोगों को मन में ये सोचना चाहिए कि हमारे हाथ से जो भी प्रसाद की वस्तु जाएगी, जो भी रोटी की गोली बनाएंगे या बेलेंगे या सेकेंगे या चावल, जो भी कुछ आपके हाथ से जाएगा और फाइनली लोगों के प्लेट में आएगा, उनको केवल भगवत भक्ति में प्रेरणा ही मिलनी चाहिए और कोई अन्य वस्तु नहीं मिलनी चाहिए। ये भावना और धारणा और प्रार्थना करके आप किचन में जाना, फिर आपके हाथ का स्पर्श हुआ कोई भी पदार्थ लो जो है लोगों को आध्यात्मिक उन्नति ही देगा, यह निश्चित बात है। जिस प्रकार से हम इच्छा करते हैं उसी प्रकार का परिणाम होता है। उसके लिए परम संत और परमहंस भक्त होने की जरूरत नहीं है। प्रामाणिक भावना जो है वो भगवान को आकर्षित करती है, और प्रामाणिक भावना से ही, प्रेम भक्ति भावना से ही, भगवान नाम की भावना से ही अन्न में आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है। तो ये केवल बरसाने के किचन में लागू नहीं है, ये आपके घर में भी लागू है। इसी भाव से घर में भी बनाना। आचार्य और गुरुदेव बताते हैं कि जहाँ पर भी रसोई बनती है उसके इंचार्ज कौन है? सबसे पहले इंचार्ज यशोदा रानी है, सबसे पहले कुक, बेस्ट ऑफ ऑल बेस्ट। बेस्ट राधा रानी भी है, लेकिन राधा रानी अपने आप को यशोदा माता की सेविका मानती है। सबसे बेस्ट तो राधा रानी है, इसलिए यशोदा बाई ने भी उनको बुलाया, अरे आपकी कन्या को भेजो मेरे बेटे के लिए। लेकिन वो ऐसे गई, ऐसे नहीं गई, अरे मुझे दुर्वासा का बदान प्राप्त हो गया, माता आपसे भी मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसे ऐसे भावना से नहीं गई। इसलिए राधा रानी यशोदा ये हमारे रसोई घर की माल दोनों मालकिने हैं, स्वामिनियाँ हैं, और उसके बाद है चंपकलता देवी। आपके घर पे भी अगर हो सके तो लिख के रखना, ये रसोई घर राधा रानी यशोदा और चंपकलता का है, और मैं उनकी दासी के रूप में उनके निर्देश में भोजन बना रही हूँ या बना रहा हूँ। इस भाव से आप अगर बनाएंगे तो आपके घर का भोजन सदैव परम स्वादिष्ट होगा। कोई कठिनाई है ये समझने में? कोई डिफिकल्टी है? कोई ईगो इश्यू है क्या? अरे मेरा किचन मैंने बनाया, किसी को नाम दे रहा हूँ, दिखते भी नहीं है। नो, ये हर एक साधारण भक्त को भी मुमकिन है कि आप ये सोच सकते हो। यहाँ तक कि ये यहाँ का रिवाज है कि नंदगांव में किचन में प्रवेश करने के पहले जो गोसाई लोग रोटी बनाते हैं, फुलका बनाते हैं, कच्चा प्रसाद बनाते हैं, वो सब यशोदा देवी को प्रणाम करके अंदर जाते हैं। कितनी अच्छी भावना है देखो, क्योंकि यशोदा देवी का किचन है, वही बनाती है कृष्ण बलराम के लिए, तो उनको प्रणाम करके ही जाते हैं लोग। बालक 5 वर्ष की बालक को गोस्वामियों को दीक्षा देते हैं, फिर वो पूजा भी करते हैं और किचन में भी जाते हैं, उनको उनकी मैयाएँ सिखाते हैं फुलका कैसे बनाना है, वो यही सिखाते हैं, दंडवत करो यशोदा माता को पहले। हमारे रमेशचंद्र गोस्वामी है ना, वो 5 साल के जब हुए तो उनका टाइम हो गया कि उनको भी नित्य गोपाल मंदिर में दीक्षा देने का समारोह आया, समय आया, तो उनको बहुत डर लग रहा था, मैया मैं 3 बजे कैसे उठ पाऊँगा, मंगला नंदगांव की 3:30 बजे होती है, और ठंड में गर्मी में 3 बजे कैसे उठ पाऊँगा। मैया भी इतनी बढ़िया, मैं उनको जानता हूँ, मैया को इतनी बढ़िया भक्त थी, वो इतनी बढ़िया वैष्णवी थी, उन्होंने बालक को एक सिंपल उत्तर दिया, जाओ बेटा यशोदा मैया से प्रार्थना करो, वो आपको जगाएगी। कितना सिंपल आंसर है, अलार्म लगा दो, जल्दी सो जाओ, रात को कम खाओ, ये सब गाइडेंस नहीं दिया, सिंपल गाइडेंस दिया, यशोदा मैया को जाके प्रार्थना करो, वो आपको जगाएगी। और गोस्वामी जी हमारे कहते हैं अगले दिन से मैं 3 बजे उठने लगा। सोचो आप, एक बालक के मन में एक शुद्ध भक्त माता कैसा संस्कार दे रही है, देखो आप। तो आज अभी वो 72 साल के हो गए, लेकिन बचपन की याद मुझे इतनी प्रेम से बताते हैं कि मेरी मैया ने मुझे ऐसे बताया था। तो नंदगांव में जो किचन में रूल लागू है वो आपके घर में भी लागू हो सकता है, आपका किचन भी नंदरानी का बन सकता है, यशोदा देवी का बन सकता है, केवल आपकी चेतना बदल गई तो यशोदा देवी का किचन हो गया वो। तो इस किचन को भी आप यशोदा देवी, राधा रानी, चंपकलता देवी का किचन बना सकते हैं, वो सब आपके हाथ में है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे ये अभी मैंने बहुत सोचा कि नहीं बताऊँ, लेकिन मुझे अभी ये बहुत ज़्यादा वेग हो रहा है बताने का, ये कथा जो मैं आपको बताना ही चाहता हूँ। हाँ देखो सुनो, मेरी बेटी की शादी थी, हाँ, और मेरे परम मित्र हैं मुंबई में सदाशिव प्रभु, उनकी बेटी भी शादी थी, दोनों का जगह भी सेम, दोनों का कैटरर भी सेम, साउथ इंडियन हमारे गांव का। तो हमने सोचा उसकी शादी हमारे बेटे की शादी के पहले है, तो उनका पूरा स्टडी करेंगे हम, वो वेन्यू को स्टडी करेंगे, उनका मेन्यू स्टडी करेंगे, किचन का सब देखेंगे। तो उस समय जो भी हुआ ना, मुझे उनका प्रसाद का जो ये था ना भाव ग्रहण करते समय अच्छा नहीं लगा, सब हमने नोट किया। तो हमने बोला प्रसाद की क्वालिटी को, दिव्यता को कैसे बढ़ाएं। तो हमने बैठ के बहुत खल किया, तो हमने एक बड़ी योजना बनाई। हाँ, न भूतो न भविष्यति, ऐसा योजना बनाई। वो है ना राजपरायण प्रभु, हमारी राजपरायण प्रभु, उनको इंचार्ज बनाया और उनके नीचे एक टीम बनाई। वो बोला आपको 7 बजे वेन्यू में जाना है, शादी शाम की है और 7 बजे वेन्यू में जाना है जब किचन के लोग एंट्री करेंगे, और देखना है कि सब कुक्स जो है वो स्नान करेंगे सबसे पहले, मेक श्योर दैट इट एक बात, क्योंकि वो बिना स्नान किए आते हैं और बनाते बनाते टमाटर भी खाते रहते हैं और काटते भी रहते हैं। तो सबसे पहले ये बोलो, और उनके किचन की जगह पर खुली जगह में मतलब मंडप बनाया और किचन बनाया था, उधर खुली जगह पे हमने यहाँ से राधा कुंड श्याम कुंड का जल और ब्रज रज गिरिराज जी का जल वृंदावन का रज बरसाने का रज इकट्ठा किया था 10 किलो, और 10 लीटर राधा कुंड श्याम कुंड का जल यहाँ से अगस्त क्रांति से भेजा था उधर, बराबर पहुँच गया था। तो वो सब जगह वो छिड़का पूरे वेन्यू में और खास करके किचन में राधा कुंड श्याम कुंड, और सबके सर पे भी छिड़का स्नान करके जब आए। किचन के अंदर ही जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा का एक मंदिर बनाया और यहाँ से सोन पापड़ी वृंदावन गोवर्धन से वहाँ भेजी और भोग लगा के यहाँ पर, और सबके हाथ से जगन्नाथ बलदेव को फूल चढ़ाया सबको, सबके सामने एक बहुत धुआंधार आरती की, सबको उस पर सम्मिलित किया और सब लोगों को दंडवत कराया जगन्नाथ जी को, और सब लोगों को सोन पापड़ी का महाप्रसाद दिया ब्रज का, और फिर एक प्रवचन दिया कि आप है ना आम तौर पे शादी में बनाते वैसे नहीं बनाना है, इसमें मंदिर लगेगा शादी में, ठाकुर जी आएंगे, राधा गोपीनाथ जी की मूर्ति आएंगी, मंदिर बनेगा, उधर सब भोग लगने वाला है, इसलिए खाना नहीं आपको कुछ, आपको कुछ खाना है तो बाहर जाके खा के कुल्ला करके वापस आ सकते हो, यहाँ पर काटते काटते खाना नहीं है कुछ, बिना भोग लगाए खाना भी नहीं, टेस्ट करने के लिए कनले ऐसे करके टेस्ट करते हैं। वो कुछ सब बहुत समझा, अच्छा प्रवचन दिया और एक लाइव कीर्तन किया 15-20 मिनट के लिए, उनको भी नचाया, और फिर प्रभुपाद जी का बड़ा स्पीकर लगाया वहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र का, और इन टीम को बताया हर 3 घंटे में आप वापस आएंगे और लाइव कीर्तन करेंगे। 7 बजे से लेकर रात 4-5 बजे तक उन्होंने कंटिन्यूस हर 3 घंटे में लेकर लाइव कीर्तन किया, बीच में वो रिकॉर्डेड कीर्तन चलता रहा और वो सुपरवाइज करते रहे कि सब लोग चकाचक है ना, ऐसा बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी करके अच्छी तरह से, और भगवान नाम का कीर्तन करते करते उनको भोजन बनाया। तो हमने देखा कि प्रसाद का जो स्वाद था ना वो ऐसा एकदम थोड़ा सा हमने उसका अनुभव किया, पहले वाला और बाद वाला, ये मैंने सब लिख के रखा है, अनोखी यादें अनोखा विचार अनोखी योजना क्योंकि हम लोगों को वो प्रसाद का क्वालिटी जो है ना इम्प्रूव करना ही था किसी भी हालत में, क्योंकि पैसे खर्च कर रहे हैं, इतने लोगों को भोजन खिलाने वाले हैं 1200 लोगों को, और अगर वो चेतना अच्छी नहीं होगी उसकी तो सब लोगों को लाभ नहीं होगा उसका, पैसे भी खर्च हो रहे हैं शक्ति भी खर्च हो रही है, तो लोगों को आध्यात्मिक लाभ वाला प्रसाद मिलना ही चाहिए, ये भावना से हमने इतना सारा प्रयास किया और भी बहुत सारे प्रयास किए, वो बाद में बताऊँगा कभी, हाँ विवाह की कथा बाद में बताऊँगा। लेकिन पूरे विवाह को आध्यात्मिक बनाने के लिए बहुत सारी योजना बनाई है और वो कार्यान्वित भी की और लोगों ने भी उसका अनुभव किया। तो आप भी अपना किचन यशोदा राधा रानी और चंपक लता का बनाइए, प्रेम से कीर्तन कीजिए, एक दूसरे को प्रेरणा दीजिए, कोई अगर कोई बड़बड़ कर रहा है तो उसको रोकिए प्रेम से, और वातावरण बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।